लगभग 3 साल बाद, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सुबह के 5 बज रहे थे। मंदिर में घंटियों और आरती का स्वर गूंज रहा था। कांगड़ा के आश्रम में रहने वाले सभी लोग मंदिर में मौजूद थे, जबकि बाकी आश्रम में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। इन सब के बीच ऊपर पहाड़ों पर आकांक्षा ध्यान में मग्न थी। आसपास हो रहे शोर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ध्यान लगाए हुए बैठी थी कि तभी पीछे से हवा में तेजी से एक डंडा उड़ता हुआ आया। वो डंडा आकांक्षा के सिर पर लगता उससे पहले उसने उसे पकड़ लिया और बंद आंखों से ही कहा, "स्टॉप इट त्रिशान." उसके ऐसा कहते ही त्रिशान पीछे से मुस्कुराता हुआ आया और बोला, "ये तुमने कैसे किया? हर बार तुम कदमों की आहट से पहचान जाती हो, लेकिन इस बार तो मैंने दूसरे पहाड़ पर खड़े होकर वो डंडा फेंका था." आकांक्षा ने आंखें खोली और धरती को प्रणाम किया। वो सीधी खड़ी हुई और कहा, "तुम मुझे पिछले 3 साल से देख रहे हो। कोई और ये सवाल करता तो फिर भी देखते, लेकिन तुम?" उसकी बात सुनकर त्रिशान ने कहा, "हाँ, इन 3 सालों में तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। जब पहाड़ों की ये ठंडली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो इस डंडे की क्या मजाल?" कुछ पता चला उसका? आकांक्षा के चेहरे पर उदासी थी। त्रिशान ने बिना बोले ना में सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी गर्दन झुका ली, जो कि इस बात का संकेत है कि इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। उसकी झुकी हुई गर्दन देखकर आकांक्षा ने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, "इस तरह शर्मिंदगी महसूस मत करो। उसे ढूंढना मिट्टी के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है। ये आसान नहीं होने वाला था। ये तो पहले से जानती थी, लेकिन इतना मुश्किल होगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हम उसे ढूंढ लेंगे। अगर दादू कह रहे हैं कि उसने जन्म ले लिया है तो होगा तो इसी धरती पर। आज नहीं तो कल वो हमारे सामने होगा." त्रिशान ने आकांक्षा का हौसला बढ़ाया। "अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ के लिए आए थे?" आकांक्षा ने त्रिशान की तरफ देखकर कहा, जिसने अपने नॉर्मल कपड़ों के बजाय खुद को एक योद्धा की तरह ड्रेसअप कर रखा था। त्रिशान ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय एक विशिष्ट तरह की मार्शल आर्ट का पोज बनाया, जो कि अक्सर अपने दुश्मन पर हमला बोलने से पहले बनाया जाता है। आकांक्षा समझ चुकी थी राजपुरोहित जी ने त्रिशान को उसके पास क्यों भेजा होगा। अगले ही पल त्रिशान आकांक्षा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आकांक्षा जवाबी हमले के लिए तैयार थी। "वेरी गुड आकांक्षा." त्रिशान के हमले के जवाब में आकांक्षा ने उस पर वापस हमला किया तो उसने खुद को बचाते हुए कहा, "मेरी तारीफ बाद में कर लेना, और कभी भी रणक्षेत्र में दुश्मनों की तारीफ नहीं की जाती." आकांक्षा ने अपने पैर से किक मारी, जिससे बचते हुए त्रिशान नीचे हो गया। इसी के साथ आकांक्षा ने एक चक्कर लगाया। उसकी पीठ त्रिशान की तरफ थी। दुश्मन की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाले को खुद से कमजोर समझना भी बेवकूफ़ी होती है। यही वजह कुछ लोगों की हार का कारण बन सकती है, त्रिशान ने कहा और आकांक्षा को पीछे कमर से पकड़कर पहाड़ के नीचे लटका दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले खुद को विजयी घोषित करना ये कहाँ की समझदारी है। आकांक्षा ने पहाड़ पर अपना पैर मारा और पीछे की तरफ से पहाड़ चढ़ना शुरू किया। इससे त्रिशान का बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पर था, जबकि आकांक्षा का एक पैर उसके ऊपर। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आकांक्षा ने अपना पैर हटाया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, "बोल देना राजपुरोहित जी से, अब आकांक्षा हर युद्ध के लिए तैयार है." त्रिशान उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों पर लगी थोड़ी मिट्टी को झाड़ते हुए कहा, "आखिरी बार काफी अच्छा था शहजादी." उसके मुंह से शहजादी सुनकर आकांक्षा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। "तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो?" उसे वहीं छोड़कर पहाड़ उतरने लगी। त्रिशान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। "मैं तुम्हें शहजादी इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि तुम सच में एक शहजादी की तरह हो, और साथ ही मेरे शहजादी बुलाने पर तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है." उसकी बात सुनकर आकांक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, "वो तुम्हें वैसे भी नहीं भूलती." दोनों जल्द ही पहाड़ उतरते हुए नीचे आ गए थे। वहां से वो दोनों मंदिर की तरफ से बढ़े। राजपुरोहित जी मंदिर में ही मौजूद थे। उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कुराहट आ गई। दोनों उनके पास गए और प्रणाम किया। "सदैव प्रसन्न रहो," राजपुरोहित जी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। "दादू, आकांक्षा पूरी तरह ट्रेंड हो चुकी है। उसकी शक्तियां तो काफी पहले जागृत हो चुकी हैं। अब तो उसने काफी सारी मार्शल आर्ट्स भी सीख ली हैं." बोलते हुए त्रिशान ने अपने हाथ पर लगी हुई चोट को दिखाया और कहा, "आज इस एंजल ने हमें नया जख्म दिया है." उसकी बात सुनकर आकांक्षा मुस्कुराकर रह गई। "अच्छा ठीक है, हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। नित्यकर्म करने के बाद हमारे कक्ष में आना." राजपुरोहित जी ने अपनी बात कही और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद त्रिशान ने कहा, "दादू आखिर क्या बात करना चाहते होंगे? ये हर बात करने के लिए अपने रूम में क्यों बुलाते हैं? यहाँ पर भी तो बोल सकते हैं ना?" उसकी बात सुनकर आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, "तुम भी बिल्कुल जाह्नवी की तरह हो। इतने सालों में मुझे उसकी कमी कभी महसूस नहीं हुई." जाह्नवी का नाम सुनकर त्रिशान उदास हो गया। "अच्छा बदला ले रही हो, मैंने तुम्हें शहजादी कहा तो तुम भी मेरे सामने उसका नाम ले रही हो ताकि मुझे भी वही दर्द महसूस हो जिससे तुम गुजर रही हो?" त्रिशान ने उदास होकर कहा, "ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इन सबको छोड़ो, अपना रूटीन पूरा करते हैं, उसके बाद राजपुरोहित जी के पास चलेंगे," आकांक्षा ने कहा। त्रिशान ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने कक्ष की तरफ चला गया। आकांक्षा ने देवी माँ को प्रणाम किया और वहां से वो भी अपने कक्ष में चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां थोड़ी धूल मिट्टी फैली हुई थी और साथ ही कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। आकांक्षा ने हवा में अपने हाथों को हिलाया और इसी के साथ वो मिट्टी इकट्ठा होकर एक जगह आ गई।
फिर वो कपड़ों के पास गई और उन्हें जल्दी से इकट्ठा करके वो वहां बनी एक लकड़ी की अलमारी में जल्दी से सेट करते हुए कहा, ये सब भी अजीब मुसीबत है। मेरे पास पूरे दुनिया जहां की शक्तियां भी आ जाएगी ना, उसके बावजूद इस कमरे की सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी, भले ही जादू से ही क्यों ना करूं। आकांक्षा ने वो काम करने के बाद एक जोड़ी कपड़े निकाले और नहाने के लिए चली गई। बड़े दादू क्या कहना चाह रहे होंगे, आकांक्षा ने अपने गीले बालों को पोंछते हुए कहा। वैसे मुझे इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले ही पता लगा सकती हूँ ना कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे, क्या ये करना सही होगा। बोलते हुए आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद की। उसने थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसे राजपुरोहित जी के कमरे के कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जहां वो और त्रिशान उनके सामने एक साथ बैठे थे। वो आगे कुछ देख पाती उससे पहले किसी ने उसके कक्ष का दरवाजा खटखटाया और बाहर से कहा, जल्दी बाहर आओ, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। बाहर खड़ा इंसान त्रिशान था। ये भी ना, दो मिनट और रुक जाता तो कम से कम ये तो चल जाता कि राजपुरोहित जी क्या कहना चाहते थे, आकांक्षा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने पास पड़ी एक क्लिप अपने गीले बालों में लगाई और बाहर आकर कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? पता है ना दादू ने क्या कहा था, कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। वो हमें सब कुछ पता ही देते तो तुम्हें अपनी शक्तियों से फ्यूचर देखने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिशान ने नाराज होकर कहा। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब चलते हैं। जैसे ही आकांक्षा बाहर चलने को हुई, त्रिशान की नजर उसके कमरे की तरफ गई। तुमने फिर जादू से साफ सफाई की ना आकांक्षा, दिस इज नॉट फेयर, यहाँ मुझे अपने हाथों से अपना रूम साफ करना पड़ता है और तुम होगी।
और मैं हूँ कि जादू से सब कुछ कर लेती हूँ, क्यों जलन हो रही है तुम्हें मिस्टर त्रिशान, अब साइड हटो और चलो। आकांक्षा ने त्रिशान को एक तरफ धकेला और अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों साथ में राजपुरोहित जी के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के मन में ही ये चल रहा था कि आखिर राजपुरोहित जी ने उन्हें किस काम के लिए बुलाया होगा। दोनों कमरे के अंदर गए और राजपुरोहित जी को प्रणाम किया। बताइए दादू, अब आप हमारी कौन सी नई परीक्षा लेने वाले हैं या कौन सा नया जादू सिखाने वाले हैं, त्रिशान ने अंदर घुसते ही कहा। इस बार हमने तुम दोनों को किसी और काम के लिए बुलाया है, पिछले 3 साल से तुम दोनों अपना काम बहुत तन्मयता से कर रहे हो, हमें इस बात की खुशी है कि तुम दोनों की मेहनत साफ दिखाई देती है, राजपुरोहित जी ने कहा। क्या उसका पता लग गया है, वो कहाँ है बड़े दादू, आकांक्षा ने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं आकांक्षा, हमें अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार रिवांश ने कहाँ जन्म लिया होगा, पिछले 3 सालों में कुदरत में कोई बदलाव नहीं हुआ, इससे ये भी जाहिर होता है कि अभी वो वक्त नज़दीक नहीं आया जब शैतान अपने मकसद को पूरा करेगा, राजपुरोहित जी ने जवाब दिया। तो फिर आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है, जल्दी बताइए वरना पिछली बार की तरह कहीं आकांक्षा फिर से अपने जादू से पहले ही सब कुछ देखने की कोशिश ना करे। जैसे ही त्रिशान ने बोला, आकांक्षा गुस्से में उसे घूर कर देखने लगी। अपनी शक्तियों का थोड़ा बहुत प्रयोग अपने हित में करने का हक तो बनता ही है। वैसे मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि पिछले 3 सालों में तुम दोनों किसी से नहीं मिले, यहाँ तक कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों अपने काम में इतने व्यस्त थे कि तुम दोनों ने खुद को सभी दुनियादारी की चीज़ों से दूर रखा। राजपुरोहित जी ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि त्रिशान बीच में बोल पड़ा, हाँ मोबाइल के बिना रहना बहुत मुश्किल है दादू। उसकी बात सुनकर राजपुरोहित जी हंस पड़े, तुम बच्चे भी ना। हाँ तो हम कह रहे थे कि जानवी का फोन आया था और उसने तुम दोनों को अपने पास भेजने के लिए कहा है। जानवी का नाम सुनकर त्रिशान थोड़ा नाराज हो गया और उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या काम है उसे हमसे, फाइनली उसे मेरी याद आ ही गई दादू, जानवी ने हमें क्यों बुलाया है बड़े दादू, उस बात को पूरे 3 महीने हो गए जब पिछली बार मैंने उससे बात की थी, आकांक्षा ने कहा। आकांक्षा, एक हफ्ते बाद जानवी की शादी है और उसने तुम दोनों को अपनी शादी में उपस्थित होने के लिए बुलाया है, उसने हमेशा तुम्हारी मदद की है, मैं चाहता हूँ कि उसके इस खास अवसर पर तुम दोनों वहाँ मौजूद रहो। जैसे ही राजपुरोहित जी ने ये कहा, त्रिशान की आंखें नम हो गईं, उसने कुछ नहीं कहा और दुखी मन से बाहर आ गया। क्रमशः